का था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियों से एक कहानी, कुरु वंश की उत्पत्ति। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम समवरन था। राजा समवरन सूर्य के समान तेजवान थे और अपनी प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखने वाले थे। वे स्वयं कष्ट उठाकर भी अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करते थे। समवरन सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। जब तक सूर्यदेव की उपासना वह नहीं कर लेते थे, तब तक जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन समवरन एक पर्वत पर शिकार खेलने के लिए गए। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक अतीव सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया हो। समवरन ने आज तक ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी थी। समवरन मन को मोह लेने वाली उस युवती पर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर उन्होंने स्वयं को उस पर न्योछावर कर दिया। वह उस युवती के पास जाकर तृषित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए बोले, तनवंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित चंचल हो उठा है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुख उपभोग करो। किंतु उस युवती ने समवरन की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक समवरन की ओर देखती रही और फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर समवरन अत्यधिक व्याकुल हो गए। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। सुंदरी, तुम कहां चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार जल के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूं। समवरन की ऐसी अवस्था और व्याकुलता से वह युवती पुनः प्रकट हुई। वह समवरन की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुक्त हूं, किंतु मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूं। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूं। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। वह युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। समवरन पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर गए और तपती तपती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगे। समवरन तपती को पुकारते पुकारते धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। जब उनकी चेतना वापस आई तो पुनः उन्हें तपती स्मरण हो आई। उन्हें तपती का वह कथन भी स्मरण हुआ कि यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। समरण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। समरण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचते रहे कि तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेंगे, उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएंगे। संवरण सूर्यदेव की आराधना करने लगे। धीरे धीरे सालों बीत गए, लेकिन संवरण तप करते रहे। अंत में सूर्यदेव के मन में संवरण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। संवरण नेत्र बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे। सहसा उनके कानों में किसी की आवाज आई। संवरण, तो यहां तप में संलग्न है, तेरी राजधानी अग्नि में जल रही है। यह कथन सुनने पर भी संवरण चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज सुनाई दी। संवरण, तेरे कुटुंब के सभी लोग अग्नि में जलकर मर गए, किंतु फिर भी राजा संवरण हिमालय के समान दृढ़ होकर अपने स्थान पर ही जमे रहे। उनके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर सुनाई पड़ा। संवरण, तेरी प्रजा अकाल की अग्नि में जलकर भस्म हो गई है, तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। इस पर भी संवरण दृढ़ता पूर्वक तप में लगे रहे। उनकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, संवरण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। संवरण सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपया करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, संवरण, मैं सब कुछ जानता हूं। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। आज से तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का संवरण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। संवरण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे और पत्नी को प्राप्त करने के बाद राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गए। विवाह के बाद संवरण भोग विलास में डूब गए और दूसरी ओर उनके राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। राजा संवरण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह संवरण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर आ पहुंचा जिस पर संवरण तप्ती के साथ निवास करते थे। संवरण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने संवरण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर संवरण के सामने उपस्थित हुआ। उसने संवरण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूं। संवरण के मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक संवरण की ओर बढ़ा दी। संवरण पुस्तक के पृष्ठों को उलट पलट कर देखने लगे। किसी पृष्ठ में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं, किसी पृष्ठ में भूखे मनुष्य जानवरों का कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पृष्ठ में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। संवरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम संवरण है। यह सुनकर संवरण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूं महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है, राज्य में न अन्न है न जल है, धरती की छाती फट गई है महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। मंत्री के मुख से अपने राज्य और प्रजा का ये हाल सुनकर संवरण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का ये हाल है और मैं यहां मद में पड़ा हुआ हूं। मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। संवरण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसके राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह संवरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। कुछ समय पश्चात संवरण और तप्ती से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कुरु रखा गया। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। आगे चलकर उनके नाम से ही कुरुवंश प्रारंभ हुआ। गाथा में अभी आप सुन रहे थे महाभारत की कहानियों से एक कहानी, कुरुवंश की उत्पत्ति। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।